संगम ही की यादगार है। तो वो तो समझ रहे थे कि परमात्मा ही पूज्य को पुजारी बनता है, लेकिन वास्तव में बात यह होती है संगम की, तो ये साधक कैसे होगी? वास्तव में सुप्रीम सोल कभी पूज्य और पुजारी नहीं बनता है, वो जिस शरीरधारी में प्रवेश करता है वो पूज्य और वो पुजारी बनता है। बात कभी पुजारी नहीं बनते माना, बाप सुप्रीम सोल बिंदु कभी किसी जन्म में पुजारी नहीं बनता। और बाबा, बाबा शब्द किसने कहा है? शिव बाबा, ये 5000 वर्ष के 84 जन्मों का शिव बाबा शब्द है नहीं, वास्तव में सबका है संगम युग का। तो संगम युग में भी जो शिव बाबा है वो भी किसी को माता देखता नहीं, भले एक साकार है और उसमें एक निराकार, भले उसमें एक जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा भोगता है और दूसरी अभोगता है, फिर भी उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो किसी के सामने माथा झुकाने वाला नहीं होगा। तो बाप कभी पुजारी नहीं बनते हैं, उनको कितना कलंकित कर देते हैं। बाप न पुजारी बनते न ठिककर बच्चर में जाते, भक्ति मार्ग में तो भक्तों ने उनको ठिककर भीतर में ठोक दिया है, पत्थर में भी भगवान मानते। ठिककर मन जिसको माया की ठोकर लगे और मिट्टी के ढेले की तरह टूट जाए, तो ऐसे ठिककर बुद्धियों में परमात्मा प्रवेश नहीं करता है। परमात्मा अटल निश्चय बुद्धि में प्रवेश करेगा, या चलायमान होने वालों में, घड़ी घड़ी चलायमान होने वालों में प्रवेश करेगा अटल निश्चय बुद्धि। उसकी निशानी है ध्रुव तारा, आत्मा रूपी सितारे हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा भी सितारा है कि एक बार निश्चय ज्ञान में करने के बाद फिर कभी चलायमान नहीं होता, अपनी स्टेज पर स्थिर रहता है। बाकी सब सितारे कुछ न कुछ चक्कर काटते हैं, चलायमान होते हैं। तो बाप भीतर बुद्धि में नहीं आता, न भीतर बुद्धि में आता। भीत कहते हैं दीवाल को, जो ज्ञान के रास्ते में दीवाल बन करके अड़ जाते हैं, न ज्ञान की बातों का प्रचार प्रसार होने देना चाहते, न खुद उस कार्य में लगते और दूसरों को भी दूर करते हैं, ऐसे भीतर बुद्धियों में परमात्मा कभी प्रवेश नहीं करता। वो तो कण कण में परमात्मा को कह देते हैं, कण कण जैसी आत्माओं में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मिट्टी के कण, उनमें भी परमात्मा को व्यापक समझ लिया, आत्मा को परमात्मा, हर आत्मा को परमात्मा कह देते। इसका मतलब कोई हर आत्मा में परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, परमात्मा पार्ट लेकर के कितने प्रत्यक्ष होता है। एक व्यापी है या सर्वव्यापी होकर आता है? वो एक व्यापी होकर के आता है। बाप कहते हैं भारत में जब जब ऐसी धर्म ग्लानी होती है, कैसी धर्म ग्लानी, कि परमात्मा आता है श्रेष्ठ में और उसको कह देते हैं कण कण में आता है, तो ऐसी धर्म ग्लानी शूटिंग पीरियड में होती है या नहीं होती है? शूटिंग पीरियड में भी ऐसी धर्म ग्लानी होती है। जो भी गुरु लोग हैं वो सब ये समझ बैठते हैं कि अब परमात्मा का कार्य हम ही करेंगे, पर की स्थापना हमारा ही काम है, भले ईटों का सुख धाम और शांति धाम बना दे, बनाया तो सुख धाम शांति धाम बनाने किसका काम हुआ है? परमात्मा का काम हुआ, शिवो हम ये बात सही हो गई ना, भले ही क्यों का बनाया, लेकिन शांति धाम और सुख धाम की रचना सिवाय परमात्मा बाप के कोई कर नहीं सकता। वो चैतन्य शांति धाम और सुख धाम परमात्मा ही ऐसा संगठन बनाता है, बाकी दुनिया में कोई मनुष्य नहीं बना सकता। तो लोग तो सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, श्लोक पढ़ देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। क्या श्लोक पढ़ देते हैं? कि परमात्मा फिक्र बुद्धि में नहीं है, पत्थर बुद्धि में नहीं है, सुपर सुपर में परमात्मा नहीं आता, जानवरों में परमात्मा नहीं आता। जैसे वो ब्राह्मण श्लोक पढ़ देते हैं, वैसे यहाँ भी श्लोक सिर्फ पढ़ देते हैं, अर्थ नहीं समझते कि फिक्र भिक्कर का अर्थ क्या है, मच्छावतार मच्छावतार का अर्थ क्या है। दूसरा पेज, वो समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा तो पतित नहीं, कर्म शरीर से किए जाते हैं तो शरीर पतित बनता है, आत्मा के ऊपर कोई लेप खेप नहीं लगता। अरे परमात्मा के ऊपर लेप खेप नहीं लगेगा, संघ का रंग नहीं लगेगा, या आत्मा के ऊपर लेप खेप नहीं लगेगा। इससे दुनिया की जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है, राम कृष्ण से लेकर के इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से लेकर के और 500 करोड़ हिंदू की आत्मा तक, सब क्वेश्चन का रंग लगता है। परमात्मा पार्ट ऐसा है जिसको संग का रंग स्थाई नहीं रह सकता। परमात्मा बाप को संग का रंग नहीं लगता, इसलिए उसको निर्लेप कहा जाता है। बाकी आत्माएं कोई निर्लेप नहीं होती। बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी, तब शरीर भी पतित बना है। माना पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा को ही लेप खेप लगता है, संग का रंग लगता है, तब आत्मा के साथ शरीर भी पतित बनता है। सोने में छाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। तो परंतु वो सब भक्ति मार्ग में बाप समझाते हैं, हर एक में आत्मा विराजमान है, परमात्मा विराजमान नहीं है। परमात्मा एक जाति होकर संसार में प्रत्यक्ष होता है, कोई सर्व जाति होकर परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता। कहा भी जाता है जीवात्मा, जीव परमात्मा तो नहीं कहा जाता। मानो परमात्मा का जीवन नहीं कहा जाता, जीवन किसका होता है? आत्मा का। महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते लेते पार्ट बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंट, ये फिर है ज्ञान की डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होती है जो ज्ञान डांस के शौकीन होंगे। क्या जो कहते हैं ज्ञान की गहराइयों में जाने से कोई फायदा नहीं है, डूब मरोगे, तो उनके सामने बाप की ज्ञान डांस नहीं होती। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर टीचर तो जरूर जानता होगा, बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को ही कहा जाता है, जाता उनका बुलावा भी होता है, बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार बनती है। ये स्कूल अथवा पाठशाला है ना, तो पाठशाला में हमेशा नंबर वार बैठते, समझ सकते हैं फलाना होशियार है और ये मीडियम है, यहाँ तो ये बेहद का क्लास है। इसमें हद के बैठने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात के दिलचस्प पर जरूर नंबर वार ही बैठे, एक जैसे बैठ जाएंगे। नंबर वार बैठने वाले बच्चे हैं तो ये बेहद का क्लास है। बाप के दिलचस्प पर बैठकर हम पढ़ाई पढ़ते हैं, वो साधारण क्लास नहीं है। इसमें किसको नंबर वार बिठाई नहीं सकते। इसमें माने किसमें ना? ब्रह्मा के द्वारा जब पढ़ाए गए हैं तो कहा कि उसमें किसी को नंबर वार बिठाई नहीं सकते। इसका मतलब इशारा दिया कि ऐसा भी कोई टाइम आएगा कि बच्चों को नंबर वार बिठाएंगे। इसलिए मुरली ने बोला परम धाम को तुम बच्चे इस शक्ति पर उतार लेंगे। तो इस शक्ति पर परम धाम का नजारा जब उतरेगा कोई स्थान पर, तब तो दिलवाड़ा मंदिर बनेगा, नंबर वार मूर्तियां बैठी हुई होंगी। तो साइलेंस की स्टेज में होने वाले बच्चे होंगे, आत्मिक स्टेज वाले बच्चे होंगे। बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं, बात बताई उस समय की जिस समय ये वाणी बोली जा रही है उस समय की बात बताई कि बाबा जानते हैं हमारे सामने जो भी बच्चे बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं। सिर्फ भावना है माना, भक्ति मार्ग वाले हैं, भगत हैं, लेकिन बाप के बारगार बच्चे नहीं। बाकी इनमें न तो ज्ञान है और न याद, सिर्फ साक्षात्कार ध्यान दीदार करते रहते हैं। तो ध्यान दीदार भक्ति मार्ग की बात है या ज्ञान मार्ग की बात है? भक्ति मार्ग की बात। हाँ, इतना निश्चय है कि ये बाबा है और इनसे हमको वर्षा लेना है। किस किस्म का वर्षा लेना है? वर्षा तो सबको मिलता है, परमात्मा बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है। एक जन्म की जीवन मुक्ति तो सबको मिलेगी, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। परंतु राजा में तो नंबर वार पद है ना, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी प्राइज देते रहते हैं, जो राय देते हैं माथा मारते हैं उनको प्राइज मिल जाती है। क्या कहा, यहाँ ब्राह्मणों की समझ भी दुनिया में भी ऐसे ही सब प्राइज देते रहते हैं। किसको? जो अच्छी राय देंगे। अच्छी राय देने वाले मिनिस्टर की संख्या कलयुग में बढ़ जाती है ना, तो जो अच्छी राय देंगे माथा मारते हैं अच्छी राय देने के लिए, तो उनको प्राइज मिल जाती। अल्पकाल का पदमान मर्दबा मिल जाएगा। अभी तुम जानते हो विश्व में संत की शांति कैसे हो? बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी, कभी विश्व में शांति सुनी है व देखी है? विश्व शांति करके दिखलावे, सब हो गए त्रण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हैं। क्या कपड़े का झंडा, तीन कपड़ों का झंडा तीन रंग का, वो ऊंचा करने से विश्व में शांति हो जाएगी? अरे वो कपड़े का झंडा तो हर एक अपने घर में चाहे जितने फैला दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। कपड़ा किसको कहा जाता है? कपड़ा मानो शरीर। तो जरूर ऐसे शरीर रूपी कोई तीन वस्त्र हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, लाल कपड़ा सबसे ऊपर केसरिया और सफेद कपड़ा विष्णु बीच में सतो प्रधान और हरा बिल्कुल नीचे। स्वर्ग लाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग ही स्वर्ग उसको दिखाई पड़ता है। सावन के अंदर को क्या दिखाई पड़ेगा, स्वर्ग ही स्वर्ग। गांधी जी रामराज चिल्लाते चिल्लाते मर गए और रामराज रामराज नहीं है, लेकिन आज तो थी, शुभ संकल्प तो था। भले रामराज नहीं आया तो राम आ गया, तो संकल्प में भी कुछ न कुछ शक्ति होती है, शुद्ध संकल्प में, वो भी अच्छी बात है। कौन से पूछो कि विश्व में शांति कब थी है? तुम प्रश्न पूछ सकते हो कि विश्व में शांति स्थापन करने वाला कौन सा झंडा होगा, जो जानता होगा वो पूछे। वो तीन कपड़ों का, वो तीन कपड़े चैतन्य होंगे या स्थूल कपड़े विश्व में शांति स्थापन कर देंगे? जरूर चैतन्य होंगे, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा तो मर गए, मुरली में तो बोला हुआ है जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा, इसलिए ब्रह्मा के चार भुजाएं भी दिखाती हैं, तो चार मुख भी दिखाते हैं। तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो, प्रश्न पूछे और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे? प्रश्न पूछने वाला टीचर तो प्रश्न को जानने वाला होना चाहिए ना। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो, है? शांति सम्मेलन तो करते रहते हो, तो किस प्रकार की शांति मांगते हो? शांति धाम तो है जहाँ सब आत्माएं रहती है। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो और दूसरा सुख धाम को याद करो। शक्ति के चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण कितने गपोड़े लगाए दिए। क्या शक्ति चक्र का भी ज्ञान कैसा होना चाहिए? सिर्फ इतना नहीं, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग संगमयुग, फिर सत्य त्रेता द्वापर कलयुग संगमयुग, सचिव में देवता त्रेता में क्षत्रिय द्वापर में दृश्य और कलयुग में शुद्ध, फिर संगमयुग में रावण, ये हो गया चक्कर। ये कोई सुदर्शन चक्र घुमाना पूरा ज्ञान प्रयोग हुआ? ये तो सिर्फ बीज बताया, इस बीज का सिर्फ पानी देकर विस्तार भी करना है तो ज्ञान से इतने है तो हम ज्ञान रूपी बीज में जब तक इतने है का पानी नहीं लगाएंगे तो बीज कभी विस्तार को प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान जो परमात्मा की प्रॉपर्टी है उससे प्यार होना चाहिए, इसलिए मुरली ने बोला भी, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, मुरली से अगर प्यार नहीं तो मुरलीधर भगवान से भी प्यार नहीं हो सकता। तो शक्ति चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण कितने गपोड़े लगाए दिए, माने शक्ति चक्र का भी अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, पूरा ज्ञान एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं, कौन कौन से ताजधारी? एक तो प्योरिटी का ताज है जो प्रकाश का घेरा मस्तक के चारों तरफ दिखाया जाता है देवताओं के, और दूसरा स्थूल ताज, वहां होगा स्थूल ताज और प्योरिटी का ताज चित्रों में दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, वो दोनों ताज यहाँ संगमयुग में प्रैक्टिकल में हम धारण करते हैं। एक है ये दीदी जिम्मेवारी का ताज, ऐसे नहीं कि दीदी दादी दादाएं ही जिम्मेवार हैं। अगर ये समझते हैं कि दीदी दादी दादाएं ही जिम्मेवार हैं ये दीदी, तो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? प्रजा बनेंगे। नहीं, हम सब की जिम्मेवारी है यज्ञ के प्रति। यज्ञ का नुकसान हमारा नुकसान। तो जिम्मेवारी का ताज जितने जितना धारण किया वो उतना ही बड़ा ताजधारी बनता है। उसके ताज में उतने ही जास्ती रतन लगे हुए होंगे। और जितनी यहाँ पवित्रता को धारण करता है उतना वहाँ उसका पवित्रता का ताज बड़ा होगा। तो हम डबल से ताज बनते हैं, हम देवता थे, अब फिर हम मनुष्य बन गए। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य तो नहीं कहा जाता, क्योंकि दैवी गुणों वाले मनुष्य वो ही देवता कहे जाते हैं। आज के मनुष्य तो आसुरी गुणों वाले हैं, जिनमें अवगुण है वो कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। शास्त्रों में जो बातें सुनी है वो तो सिर्फ गाते रहते हैं। क्या संगम की बातें हैं कि मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं? बातें कहाँ की है? संगम में कैसे? संगम युग में ऐसे कि जिन जिन आत्माओं को तो परमात्मा बाप पार्ट के परमात्मा पार्ट के ऊपर निश्चय होता जाता है, जो जो आत्मा उस पार्ट को पहचानती जाती है वो उसकी महानता को और अपनी शुद्धता को जान लेती है कि इसमें महानता क्या है और हमारे में शुद्धता क्या है। तो जब सामने आती है तो कहती है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आते ही तरस पड़ोई तो वो तो सिर्फ गाते रहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। और तुम इसके प्रैक्टिकल स्वरूप को समझ रहे हो, कैसे आचितम केशवम राम नारायण, जैसे तोते को सिखलाया जाता है ना, ऐसे मंत्र जाप करते रहते अचितम आ माने नहीं, चितम माने नीचे गिरना। जो कभी ऊंची स्टेज से नीचे नहीं गिरता वो हुआ अचितम। तो कौन हुआ सिवाय शिव बाबा के पार्ट के? ऐसा पार्टधारी कौन होगा? 500 करोड़ मनुष्य आत्मा तो सब नीचे गिर जाती है, समझ रहे? तो जरूर संगम युग में कोई ऐसा पार्टधारी परमात्मा पार्ट प्रैक्टिकल में होता है जो उसकी यादगार बनती है। नाम पड़ता है, नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर। तो अचितम नाम पड़ा है तो जरूर ऐसा काम करके दिखाया होगा ना, जब वो कभी ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में गिरा नहीं। केशवम का माने ब्रह्मा, माने ईश्वर, शासन करने वाला, यानी ब्रह्मा को भी शासित करने वाला, कंट्रोल करने वाला। तो ठीक है, जो जगत की बड़ी माँ, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, जगत की बड़ी माँ होगी उसको कंट्रोल कौन करेगा? बड़ा बाप, बड़े से बड़ा बाप कौन? परमपिता, जगत पिता। वो तो ऐसे ही शास्त्र के श्लोक गाते रहते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम आदि आदि। कहते हैं बाबा आकर के हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, दुनिया कहाँ होगी? साकारी सृष्टि को ही दुनिया कहा जाता है, वहां तुम आत्मा रहती हो। ब्रह्मलोक में वहां शरीर नहीं होते, माने वहां देवान देवान नहीं हो सकता, माने वहां बाप के घर में जो रहेंगे चाहे वो साकारी दुनिया में परमधाम का सैंपल हो और चाहे निराकारी दुनिया का हो, लेकिन बाप के घर में वही रह सकेंगे जो पूरे बिंदु होंगे, देह के भान से मरे हुए होंगे। तो वहाँ आत्मा ही रहती, वास्तव में पार्ट बजाने की दुनिया तो यही है। क्या बाप का घर कोई पार्ट बजाने की दुनिया नहीं है? वो है शांति धाम। बाप समझाते हैं, मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, बैठ अपना परिचय मेरा परिचय मेरे चला और कोई नहीं दे सकता, और मैं परिचय देता हूँ तो बिंदु की बात नहीं है, जरूर साकार स्वरूप की बात है। बिंदु बैठना उठना चलना फिरना सोना बिंदु का नहीं होता, मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्म को नहीं जानते। ये भी अभी सुनते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है क्या? ये राम की दुनिया नहीं है, पुरानी दुनिया रावण की दुनिया। जो नंबर वन पावन था वो ही फिर नंबर लास्ट पतित बने, उनको अपना रथ बनाता हूँ। तो नंबर वन पावन कौन बनता है? नर से नारायण बनने वाला, जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है वो नंबर वन पावन बनता है, या नर से प्रिंस बनता है अगले जन्म में सतयुग में? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है वो नंबर वन पावन, तो नंबर वन पतित बनता है। सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया हुआ है, लास्ट में एक बैगर के रूप में पड़ा हुआ भारत दिखाया है। भारत में भगवान आते और ब्रह्मा को खड़ा हुआ दिखाया, क्योंकि कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाते हैं। क्रिश्चियन से न ज्यादा पावन बनते हैं न ज्यादा पतित बनते हैं, तो कृष्ण की आत्मा भी न जाती पतित बनती है और न जाती पावन बनती है, न ज्यादा फुल बैगर बनती और न फुल प्रिंस बनती। जब तक फुल बैगर नहीं बने हैं तब तक फुल प्रिंस नहीं बन सकते। तो फर्स्ट तो लास्ट में आया है, ये के आदमी भी जो फर्स्ट था वो ही फिर लास्ट में आता। तो फिर उसको फर्स्ट में जाने चित्र में भी समझाया है, ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, इसके द्वारा ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया तो द्वारा कहाँ गया है? फिर द्वारा कैसे साबित होगा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराए? आदि सनातन देवी देवता धर्म में पहले कौन होंगे? पहले तो लक्ष्मी नारायण चाहिए। तो जरूर इससे साबित होता है कि वही ब्रह्मा अपना पुराना पार्थिव शरीर छोड़कर कोई और ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके फिर से आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की दूसरी मशीनरी शुरू करता है। पहली मशीनरी है ब्राह्मण शूद्रों को ब्राह्मण बनाना, नंबर वार उनको पवित्रता का महत्व बुद्धि में बैठा देना, और फिर दूसरी मशीनरी है ब्राह्मणों को देवता बनाना। तो ऐसे तो नहीं कहते हैं देवी देवता धर्म में आता हूँ, मैं देवी देवता धर्म में नहीं आता हूँ, किस में आता हूँ? ब्राह्मण जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर के नारायण बनते हैं। गायन क्या है? नर से नारायण बनने का गायन है, नर से प्रिंस बनने का गायन नहीं है, प्रैक्टिकल बात का ही गायन होता है। विष्णु कोई और नहीं है, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो, विष्णु कौन है ये भी कोई जानते नहीं है। ऐसे ही कह देते हैं दो हाथ लक्ष्मी के और दो हाथ नारायण के। अब भुजा का मतलब क्या है? भुजा माना सहयोगी आत्मा, या कोई स्थूल भुजा से मतलब है? कोई आत्मा लैक्टिस्ट रूप से सहयोगी बनती है, कोई रैकियस रूप से सहयोगी बनती है, तो जरूर कोई चार आत्मा रूपी भुजाएं हैं जो परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनती है, दो राइटियस रूप में और दो लैक्टिक रूप में। तो राइटिंग रूप में जो सहयोगी बनने वाली आत्मा है वो भी होनी चाहिए प्रैक्टिकल में, ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। और दूसरी लैक्टिस्ट रूप में सहयोगी बनने वाली आत्मा शंकर पार्वती। तो बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों का राज समझाता हूँ, इन चित्रों के राज का भी कोई और बताने वाला नहीं हो सकता। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो फिर यह बनते, क्या बनते यह इशारा किया लक्ष्मी नारायण की चित्र की तरफ, प्रवृत्ति मार्ग है ना, ब्रह्मा और ये सरस्वती, फिर वह बनते हैं। इन्हें मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ, शूद्रों को नहीं। इनमें मैं प्रवेश करके ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ तो ये ब्रह्मा भी सुनते, ये फर्स्ट नंबर में सुनते। ये है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्र नदी पर लगता है। कहाँ लगता है मेला? माना मिलन मेला, वो तो स्कूल मेले मनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में वास्तव में बात यहाँ की है, परमात्मा बाप आकर के आत्माओं को मिलन मेला के साकार में मनाते हैं, तो उसका गायन है। ये मेला ब्रह्मपुत्र नदी पर लगता है और बड़ा मेला लगता है, इससे बड़ा मेला और कोई होता नहीं है। ब्रह्मपुत्र का ही नाम क्यों लिया? वास्तव में तो भक्ति मार्ग में गंगा सागर का मेला कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र सागर का तो मेला नहीं गाय नहीं, ये तो बाबा ने बताया हमको असलियत। लेकिन ब्रह्मा जी सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी, ज्ञान की गंगा। क्यों? क्योंकि वो गंगा तो मैदान में आकर कचड़े में जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी वो तो पहाड़ों पर ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती बहती और डायरेक्ट सागर में आकर मिल जाती है। तो उस ऊंची स्टेज में बहने वाली नदी का गायन बाबा ने बताया, वो ही जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा ब्रह्मपुत्र, जहाँ सागर और नदी का संगम होता है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ और यह वह बनते। क्या बनते हैं? यह वह बनते हैं। इनको वह बनने में एक सेकंड लगता है, ब्रह्मा तो वैष्णो देवी बनने में कितना टाइम? एक सेकंड। बाकी ये 50-55 वर्ष के खाते में जाते हैं इनको निश्चय पैदा करने में। क्या निश्चय पैदा करने में? सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा के फोटो को नीचे दिखाया गया है, नीचे कार्नर में खड़ा हुआ, बैठा हुआ भी संगम में, और मुर्गी में बोल दिया कि सीढ़ी के चित्र में ऊपर में विनाश होगी। मन बुद्धि वृत्ति आत्मा का कैसे विनाश हो जाएगा? हाँ जरूर, यदि के आज में कोई ऐसा वाकिया हुआ है जिसमें ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं भी जो मूल रूप में प्रजापिता था, जिसके द्वारा उन्हें अपने साक्षात्कारों का रहस्य मिला, उस ज्ञान बीज बाप से विपरीत बुद्धि बने, तो वो प्रीति बुद्धि बनना पड़े। जब तक प्रीति बुद्धि नहीं बने हैं तब तक विजयंती नहीं हो सकती। प्रीति बुद्धि किससे? बिंदु से। बिंदु से प्रीति बुद्धि और बिंदु से विपरीत बुद्धि, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। जब तो जरूर कोई साकार स्वरूप होता है जिससे प्रीति बुद्धि हुआ जाता है और जिससे विपरीत बुद्धि हुआ जाता है, तो उनको यह बनने में एक सेकंड लगता है, साक्षात्कार हो जाता है, और दृढ़ निश्चय हो जाता है मैं ये बनने वाला हूँ, विश्व का मानित बनने वाला हूँ, तो ये गधाई हम क्या करूँगा, ये सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है तीसरा देश और ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। तुमको 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 माने सन्मुख जो होता है उसको कहते हैं तुमको, और इनको किसको कहते हैं, जो बाजू में बैठा होता है उसको कहते हैं इनको। तो तुमको भी पहले मालूम हुआ, यदि कि आज की बात बताई कि बाबा आया हुआ है, अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो तुम भी झट भागे, कहाँ के कहाँ भागे। तुमने किससे कहा, यदि के आज ने उसके लिए कहा जिसको अभी इमर्ज करके सन्मुख बैठा के बात करते हैं। मैंने बोला मैं जो बच्चे सन्मुख नहीं होते हैं उनको भी अपने सामने इमर्ज कर लेता हूँ। फिर बोला मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, यह ब्रह्मा तो बीच में सुन लेते हैं। माना काम जिससे लेना होता है उससे बात की जाती है, और कोई दीगर आदमी बीच में भी सुन लेता है। उसे साबित हुआ कि ब्रह्मा के द्वारा कार्य संपन्न नहीं होने वाला है, संपन्न कार्य होने वाला है तुम बच्चों के द्वारा। तुम झट भागी, बाबा ने तुमको नहीं भगाया क्या, ये अंतर की बात है। एक तो कोई खुद भागे और दूसरा उसको भगाया जाए। तो जो धक्का मुक्की से चलता है वो हुआ पुष्करणी ब्रह्म, और जिसने अपनी ज्ञान की लगन है परमात्मा का ज्ञान लेना चाहता है तो उसको धक्का मुक्की की दरकार नहीं होती। तो बाबा ने तुमको नहीं भगाया, हाँ ये बच्ची बन गई थी, कहते हैं कृष्ण ने भगाया, अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना, भगाया किस लिए, पटराना और पटरानी बनाने के लिए ही भगाया होगा ना। तो उस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी तुम बनते क्या, भगाया किनको, महाराजा महारानी को नहीं भगाया, भगाया किसको, जो पटरानी और पटराना बनते हैं ज्ञान में तो आते हैं, भक्तामुक्ति से ज्ञान में आ जाते हैं, लेकिन बाद में पत्त में जाके गिरते हैं, पापी बीमार से एकदम नीचे गिरते हैं, पत्त राणा और पत्त रानी बन जाते हैं। तो ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। भगवान बाप जो ज्ञान सुनाते हैं वो महाराजा महारानी बनने का ज्ञान सुनाते हैं, इसमें पत्त से गिरने की बात भगवान कोई नहीं सुनाते हैं। तो महाराजा महारानी बनना तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं है। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तभी कलंक की दर बनती है, अगर कलंक न लगे हो तो कलंक की दर अवतार का दान कैसे होगा। कलंक लगते हैं शिव बाबा उस पर कलंक लगते हैं, जो चोर हो उसको चोर कह दिया जाए वो तो कोई कलंक की बात नहीं है, वो तो रियलिटी है, सच्चाई है। लेकिन जो आता है पवित्र बनाने के लिए और उसको कहा जाए कि वो पतित बनता है, व्यभिचारी बन रहा है, संग का रंग लगा करके, तो कलंक की बात हुई ना। परमात्मा बाप है एवर प्योर, तो एवर प्योर तो हमेशा एवर प्योर ही रहेगा ना। हीरे को कीचड़ में डाल दिया जाए तो क्या उसकी कीमत कम हो जाएगी, वो कोई नीच वस्तु हो जाएगा क्या, नहीं। तो सुप्रीम सोल बाप को कलंक लगाते हैं, कितनी ग्लानी करते हैं, कौन दुनिया वाले, ब्रह्म की दुनिया की बात, इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम बच्चों का अपना ही छोटा सा संसार है, इसमें अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी। कह देते हम आत्मा तो परमात्मा, परमात्मा तो हम आत्मा। अब बाप समझाते हैं ऐसे नहीं है, हम आत्मा अभी तो ब्राह्मण है, परमात्मा के ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनने की बात नहीं है। परमात्मा कभी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। अब बात समझाते हैं ऐसे नहीं है कि आत्मा तो परमात्मा, हम आत्मा अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण है सबसे उसको, उनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। डायनेस्टी कहाँ होती है? राजाई में। ब्राह्मण अभी चाहें कि हम राजाई पर बैठे हुए हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। ब्राह्मण सब होते हैं सेवाधारी, ब्राह्मणों को सिर्फ सेवा करनी है दूसरों की, किसी के ऊपर राजाई या हुकुम भूकुम नहीं चलाना। डायनेस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, ये तुम्हारा कुल है, ब्राह्मण कुल है बहुत सही। हम ब्राह्मण तो देवता बनने वाले हैं। कौन बनेगा देवता? जो फुल कास्ट ब्राह्मण होगा वही फुल कास्ट देवता बनेगा। अगर फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं हुआ तो संपूर्ण देवता भी छोड़ा करना संपूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए दैवी गुण जरूर धारण कर ले। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल थाल बनते हैं, है? दम लगाई जाती है। सीक्रेट है श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल थाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है ज्यादा। हाँ, भोगी लोग बहुत भोग लगाते हैं और इतने भोग लगाते हैं कि दुकान निकाल के बैठते हैं कि पैसे दो और भोग भोग लो, पैसे नहीं दोगे तो भोग भी भोग दे, निकलो बाहर। तुम तो भोग के लिए पैसे नहीं देते। तो भोग इतना लगाते हैं कि उनकी दुकान लग जाती है, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई और यात्री जाकर के लेते हैं भोग। मनुष्यों को बहुत भावना रहती है कि शिव बाबा का भोग खाएं। हाँ, मधुबन से भोग आया है, मधुबन का भोग मम्मी को खिलाएं, पापा को खिलाएं। तो मनुष्यों को बहुत भावना रहती है, सचिव में तो ऐसी बातें होती हैं। हाँ, माँ भोग वासना माँ नहीं होती माने जो संगम जी सर्ग का नजारा होगा उसमें भोग ध्यान दीदार सब फलाफ हो जाएगा। वहां तो ज्ञानी तू आत्माओं का संगठन होगा, भोग ध्यान दीदार ये तो भक्त लोगों की बातें हैं जिनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठता नहीं। तो सतयुग में भोग आदि होता नहीं तो फिर रोग आदि भी नहीं होते। क्या कहा? जहाँ भोग वासना होगी तो वहाँ रोग आदि भी होंगे। कभी पहले तपो प्रधान होते हैं फिर तमो प्रधान हो जाते हैं। कराची में पहले सतो प्रधान थे, जब सतो प्रधान थे तो वहाँ बीमारियां आदि नहीं होती थी, टैबलेट इंजेक्शन आदि ऑपरेशन आदि नहीं करने पड़ते थे और कोई हॉस्पिटल साथ में नहीं बनाया जाता था, सिर्फ शुद्ध रूहानी हॉस्पिटल। और वो सतो प्रधान फिर क्या बन जाते हैं? तमो प्रधान बन जाते। तो बिना टैबलेट के بنا انجیکشن کے اور بنا ہاسپٹل کو ساتھ رکھے زندگی چل نہیں سکتی. تو سب یہ بیماریاں دواپر سے نکلتی ہیں. کہاں سے نکلتی ہیں؟ دواپر. دو پور جب ہو جاتے ہیں, ایک پور نہیں دو پور, دو دو باتیں, دو دو متیں, دو دو راجے. پرماتما باپ آ کر کے جب پڑھاتے ہیں, چاہے ماں کے روپ میں پڑھائیں چاہے باپ کے روپ میں, تو دواپر نہیں ہوتا. ساری برہمنوں کی دنیا کا سنگھن ایک استھان سے چلتا ہے, ماؤنٹ آبو سے. ایک راجیہ, ایک بھاشا, ایک دھرم. پھر جب شنی چھوڑ دیا تو ساکارتن بدھ ہو گیا اور دیہداری گروہوں کا شاسن ہو گیا. الگ الگ جونل انچارج بنا دیے جاتے ہیں. دھرم سکتا, راج سکتا الگ الگ ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. تو ضرور انیک متیں ہوں گے, دو متیں ضرور ہوں گے. تو یہ دواپر یوگ سے بات ہوتی ہے شروع بیماریوں آدی کی. بات آ کر تم کو اور ہیلدی بناتے ہیں جو کب بیمار نہیں پڑیں گے. تم پرشارتھ کرتے ہو باپ کو یاد کرنے کا, جس سے تم ایور ہیلدی بنتے ہو. آئل بھی تمہاری بڑی ہوتی ہے, ایسے نہیں بیچ میں اکال مرتی ہو جائے گی. یہ کل کی بات ہے, 150 آئل تھی نا, ابھی تو 35 ورس ایوریج ہے. کیونکہ وہ تو یوگی تھے اور اب بن گئے ہیں بھوگی. پہلے آئل لمبی ہوتی تھی, ایک شریر کی جسمانی آئی ہوتی ہے اور ایک آتما کی روحانی آئی ہوتی ہے. یہاں سنگم بھی شوٹنگ پیریڈ میں بھی یہ آیو لمبی اور کسی کی چھوٹی ہوتی ہے. کوئی گھڑی گھڑی جنم لیتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں. جنم لینا جنم کسے کہا جاتا ہے؟ پرماتما باپ کے پارٹ پر نشچے بیٹھا مانا جنم ہوا, اور نشچے اڑ گیا مانا مرتی ہوگی. تو کئی بھی شوٹنگ جب ہوتی ہے شام کی تیز کی گروہوں کے دوارا, تو گھڑی گھڑی جنم اور گھڑی گھڑی مرتی ہوتا ہے. اور ستو پردھان یوگ میں ایسا نہیں ہوتا. آئل بڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ یوگی تھے اور یہ بھوگی. تم راج یوگی اور راج رشی ہو, اس لیے تم پوتر ہو. پرنتو یہ ہے سنگم یوگ پرشوتم. کیسا سنگم یوگ؟ سادھارن نہیں, پرشوتم سنگم یوگ ہے. پرش مانے آتما, اور آتماؤں میں جو اتم اتم پارٹ دھاری ہیں ان کے پرتکش ہونے کا یہ یوگ ہے. پرتکش کی جنم لینے کا یہ یوگ ہے. یہ پرشوتم ماس اتوا ورت نہیں ہے. کیا نہ پرشوتم ماس ہے نہ پرشوتم ورت ہے, یہ پرشوتم یوگ ہے. باپ کہتے ہیں میں کلپ کلپ پرشوتم سنگم یوگ یوگ آتا ہوں. باپ روز روز سمجھاتے رہتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں ایک بات کبھی نہیں بھولنا, پاون بننا ہے تو مجھے یاد کرو. کیا اگر پاون بننا ہے تو مان ایکم, اور کوئی کو دوجم کو یاد نہیں کرو. کہتے ہیں ہاں بابا, ہم ایک بندی کو یاد کریں گے, کوئی دوسری بندی کو یاد نہیں. کیسے پتا چلے گا تم نے ایک بندی کو یاد کیا دوسری بندی کو یاد نہیں کیا؟ بندو بندو آتما ہے تو سب ایک جیسی, کوئی فرق دکھائی پڑے گا کیا؟ کہیں گے کہ نہیں, پرماتما کی بندی میں لائٹ بہت بڑی ہوگی. ارے لائٹ وہ کوئی اسکول چوری ہے کیا جو اسکول لائٹ نکلے گی؟ کون سی لائٹ نکلے گی؟ وہ تو جان کی وشال لائٹ نکلے گی. ایسی جان کی وشال لائٹ نکلے گی وناش کے پیریڈ میں, جو تم اس جان کی لائٹ کی تیکھنتا کو سہن نہیں کر سکیں گے. کہیں گے بس بس اب ہم مان گئے. تو پاون بننا ہے تو مجھے یاد کر, یہ ایک بات کبھی نہیں بھولنا. کون سی بات؟ کہ اور کوئی دوسرے یاد نہیں کرنا, بھوک پہ گھڑے کوئی دوسری بندو کو یاد کر لو. یہ پکا پتا رہنا چاہیے کہ ہم اسی بندو کو یاد کر رہے ہیں. تو کیسے پتا چلے گا؟ ضرور کسی ساکار تن کے دوارا ہی پتا چلے گا. کیونکہ بتایا اس برہما تن میں آتے ہیں, پتا کیسے چلتا ہے کہ میں باپ بھگوان ہوں؟ تو جواب دیا, جب جان دیتے ہیں تب ہی پتا پڑتا ہے کہ میں باپ بھگوان ہوں. تو اپن کو آتما سمجھو, دیہ کے سبھی دھرم تیاگو, اب تم کو واپس جانا. کہاں جانا ہے؟ دیہ اور دیہ کے سمبندھوں کی دنیا سے پرے جانا, واپس جانا ہے. میں آیا ہوں تمہاری آتما کو صاف کرنے. کیا؟ میں آیا ہوں. میں یہ کس نے بولا؟ سپریم سول نے بولا یا پرجاپتا نے بولا؟ سپریم سول بولتا ہے کہ میں آیا ہوں تمہاری آتما کو صاف کرنے, جان جل سے. کیونکہ جان سوائے پرماتما کی اور کوئی دے نہیں سکتا. تو اس آتما کو صاف ہونے سے پھر شریر بھی پوتر ملے گا. آتما اگر صاف ہوگی تو شریر پوتر ملے گا. آتما اگر گندی رہ گئی تو شریر بھی سونے 16 کلا یا 15.5 کلا یا کم کلاؤں والا ملے گا. یہاں تو وکار سے پیدا ہوتی. آتما جب سمپورن پوتر بنتی ہے تو یہ پرانی جوتی کو چھوڑ دیتی. جوتی مانا شریر مانا گلا کر کے نہیں اٹھانا, اٹھا لیا جاتا ہے کہ آتما جب سمپورن بن جائے گی تو یہ شریر چھوٹ جائے گا. ارے سب آتما سمپورن بن جائیں گی سب کا شریر چھوٹ جائے گا تو نئی جنریشن کہاں سے آئے گی؟ کہتے اسے ہم کو کیا لینے دینے. ایک بات ہے تمہارا حساب کتاب نہیں ہے نئی تک شروع کرنے کا تو تم تو ایسا ہی جواب دو گے. لیکن جن کو نئی جنریشن شروع کرنا ہے جو نئی دنیا کی ستھاپنا کے نمت بنیں گے ان کی بدھی میں تو یہ بات ضرور چلے گی کہ شریر چھوڑنا منا مرنا اس کا کیا مطلب ہوا؟ باپ شریر چھوڑانے کے لیے آئے ہیں کیا؟ شریر چھوڑنا منا مرنا جیتے جی مرنا, دیہ بہن کو تیاگنا مانا شریر چھوڑنا. باقی ایسے نہیں ہے کہ جیسے برہما سرسوتی نے شریر تیاگ دیا تو ویسے ہم بچوں کو بھی شریر تیاگ کر کے کوئی چلا جانا ہے واپس. نہیں, دیہ بہن کو تیاگنا. تو پرانی جوتی کو چھوڑتے ہو پھر نہیں ملے گی. تمہارا گائن ہے بندے ماترم, تم دھرتی کو بھی پوتر بناتی ہو. کون سی دھرتی کو؟ یہ جو وایو منڈل ہے اور یہ جو استھان ہے پھول اور یہ پانچ تتو سے بنا ہوا جو پھول شریر ہے اس کو بھی پوتر کون بنائے گا؟ آتما ہی پوتر بناتی, آتما ہی اپنا وایو منڈل اپنے آپ بناتی ہے. تو ہم ایسی اسٹیج دھارن کر لیں اس دکھ کی دنیا کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی ہم کوئی دکھ فیل نہ کریں, اتنی خوشی کی اسٹیج بنی رہے کہ کیسے بھی چھٹی میں اپنے کو راس منٹ نہ آنے دے. امنگ اتساہ ہمیشہ بنا رہے, موجوں کو یوگ بنا رہے. تو کہیں گے کہ اب ہم وایو منڈل کو پرتھوی روپی دھرنی کو اور اپنے شریر روپی پانچ تتوں کو شدھ کرنے والی شدھ آتما بن چکی. تو تمہارا گائن ہے بندے ماترم, پھر ماتاؤں کی وندنا کی جاتی ہے. ایسی ماتاؤں کی وندنا کی جاتی ہے جن کے وائبریشن ایسے پوتر بن جائیں کہ دیوچار دیوچاری درشٹی وکتی کا نام نشان بھی نہ رہے. پرتھوی کو بہت دور, دیوچاری کرم اندریوں سے کرم کرنا وہ تو بہت دور کی بات, لیکن درشٹی وکتی میں بھی کوئی ایسے وائبریشن پیدا لو. تم دھرتی کو بھی پوتر بناتی ہو جن کا گائن ہے بندے ماترم. تو کون سی ماتاؤں کا گائن ہے؟ ودیش کی ماتاؤں کا گائن ہے یا سودیش بھارت کی ماتاؤں کا گائن ہے؟ विदेश की धरनी, विदेश की नदियाँ भारत की ही नदियाँ हैं जो पवित्र गाई जाती है, तो तुम भारत की धरनी को भी पवित्र बनाती हो, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो। किसका द्वार? स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु ये कोई जानता नहीं है क्या कि माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं? पिताओं ने क्या बुरा किया है? इसलिए पिताओं को पहले ही कैद दे दिया। क्या जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन, वो अपनी दुर्योधन दुशासन व्यक्ति को छोड़ने वाले है नहीं। इसलिए बाबा किसको आगे बढ़ाते हैं? कन्या माताओं को आगे। भारत माताओं का गायन है, वंदे मातरम कहा जाता है, ऐसे नहीं वो कोई विधवा माता है। क्या वंदे मातरम है तो जरूर भारत में कोई विधवाओं की तो पूजा होती नहीं, मान्यता होती नहीं, तो जरूर उस माता जिसको वंदे मातरम कहा गया है उसके साथ पिता भी होगा जरूर, लेकिन बहन क्यों नहीं, वंदे पितरम क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि पवित्रता की पूजा की जाती है, अपवित्रता की पूजा नहीं की जाती। तो इस बात को कोई जानता नहीं है कि माताएं सड़क का द्वार कैसे खोलने के निमित्त बनती है। प्रदर्शनी अंक के चित्र में हिंसक अहिंसक युद्ध का चित्र दिखाया गया, नीचे हिंसक युद्ध दिखाया गया है और ऊपर अहिंसा के युद्ध है। माला के अंदर शक्तियां खड़ी हुई हैं बाबा के साथ और दूसरी ओर शक्तियों के रूप में पुरुष दिखाए गए हैं, एक भी स्त्री का चेहरा नहीं है और बाबा मुनि उठा करके इशारा कर रहे हैं मारो इनको वाइब्रेशन। क्या अपने शुद्ध वाइब्रेशन से हे माताओं तुम उनके गंदे वाइब्रेशन को मार दो। बाकी कोई हिंसक युद्ध की बात बाबा नहीं सिखाते। तो गायन किसका होता है? माताओं का गायन है वंदे मातरम, और वो भी भारत में किया जाता है, विदेशी लोग कोई नहीं कहते हैं क्या वंदे मातरम, क्योंकि वो देश जो है वो है पितृ प्रधान, उनमें धर्म पिताओं को विशेष मान्यता है और भारत में माताओं की विशेष मान्यता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि देवताएं गाय की पूछ पकड़ करके, गौ माता की पूछ पकड़ करके विषय वैतरणी नदी पार कर गए। न मालूम हो तो कलकत्ते में जाके जनवरी में देखना कैसे गौ की पूछ पकड़ करके त्रास करते हैं। परंतु ये बात कोई जानता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सीखे बच्चों पति मात पिता बाप दादा का याद क्या है? गुड मॉर्निंग रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
इसमें मुख्य कौन कौन है? जैसे कहते हैं ना सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। दुनिया के हिसाब से इस दुनिया में सबसे साहूकार कौन है? जगह पर अरे दुनिया के हिसाब से, ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से नहीं, काटा बिरला तो हिंदुस्तान की सिर्फ बात हो गई, एक देश की बात हो गई, सारी दुनिया में रॉकफेलर नाम क्या रखा उसका? रॉक माने चट्टान, फेलर माने फेल करने वाला, पत्थर बुद्धि अहिल्या। अहिल्या क्या बन गई? पत्थर बुद्धि। आही माना सर्प, ले माना ले आई, जो परमात्मा बाप के सामने भी काम विकार रूपी सर्प को, क्रोध विकार रूपी सर्प को ले आई, ऐसी पत्थर बुद्धि बनने वाली अहिल्या, उसके भी कारनामे को फेल करने वाला, उसका नाम पड़ा रॉकफेलर। इस दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा साहूकार पूंजीपति। तो जैसे उस दुनिया में कहते हैं, नाम निकालते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा दुनिया का साहूकार कौन है, फिर उसमें नंबरवार नाम भी निकालते हैं, उसके बाद कौन। अब तुम तो जानते हो कि ब्राह्मणों की दुनिया का सबसे साहूकार कौन है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो कोई सबसे साहूकार होगा, हद में नहीं बेहद का साहूकार, माना ज्ञान रत्नों का साहूकार। तो वो तो घायल है, भक्ति मार्ग में भी गाते हैं। क्या गाते हैं? हाँ, भर दे झोली ये भी गाते हैं। हाँ, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। वो तो कहेंगे अमेरिका है सबसे साहूकार। रॉकफेलर भी कहाँ का है? अमेरिका। अमेरिका आओ, तुम मेरे हो क्या? माना प्रश्न पैदा कर दिया, संशय है कि तुम मेरे नहीं हो।